ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति ने दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार दिए। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र, त्रिपुरा सरकार, एनएलएफटी और एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। इनमें 34 पुरुष और 16 महिला शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को पुरस्कार के रूप में 50,000 रूपये नकद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों के प्रयासों को सराहने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में कल शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला हुआ है। हालांकि कल केवल शिक्षकों को ही उद्यान में प्रवेश मिलेगा। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति भवन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को अमृत उद्यान आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भी देश भर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति भवन के विशेष आमंत्रण पर अमृत उद्यान का भ्रमण किया था। अमृत उद्यान में इस बार आगंतुकों के बीच मौसमी फूल और पौधे आकर्षण का केंद्र है। इनमें बॉन्साई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल शामिल है। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष ऐसी व्यवस्थाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में निशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि उद्यान में प्रवेश केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ शकलैन अख्तर, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में जारी की गई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज शपथ ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। श्री जाजू ने आशा व्यक्त की है कि मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के उत्सव भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे। खेल उत्सव 2024 का आयोजन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 27 से 30 अगस्त के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था। इस उत्सव के दौरान बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली नगर निगम MCD के 12 वार्ड समितियों के आज हुए चुनाव में भाजपा ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की है। आज सुबह 10 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे संपन्न हुई। एक रिपोर्ट।
दिल्ली नगर निगम के वार्ड समितियों को चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भाजपा ने जिन 7 जोन में जीत हासिल की है उनमें केशवपुरम, नजफगढ़, सहारा, दक्षिण और उत्तरी, सिविल लाइन, सेंट्रल जोन तथा नरेला जोन शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने SP जोन, करोलबाग, रोहिणी वेस्ट और साउथ जोन में जीत दर्ज की है। विपक्ष द्वारा काफी लंबे समय से वार्ड समितियों के चुनाव कराने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना ने निगम आयुक्त को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि इससे पहले निगम महापौर डॉ स्वेली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लक्ष्य के अंतर्गत देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज राजधानी में शुरू होने वाली लग्जरी बसों का निरीक्षण किया। दिल्ली प्रीमियर बस एग्रीगेटर योजना के तहत जल्द ही इन बसों को राजधानी में चलाया जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि शहर में शून्य उत्सर्जन के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवा के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के विस्तार कार्य के कारण मेट्रो की येलो लाइन पर आज रात 10 बजे से समयपुर बादली और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो रेल एक ही रेलवे ट्रैक पर परिचालित की जाएगी। इन दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच रेल परिचालन का ये परिवर्तन रोजाना मेट्रो सेवा शुरू होने से सुबह 7 बजे तक भी जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DAMRC ने बताया है कि रेल परिचालन में ये बदलाव अगले आदेश तक लागू रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज INA क्षेत्र में नगर निगम के नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाले में कचरा डालने से रोकने की व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से नाले के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कहा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये खुशी की बात है कि NLFT और ATTF हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में समर्पित नोटरी पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये पेपरलेस फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, साथ ही इससे नोटरी और जनता को मदद मिलेगी। नोटरी पोर्टल आवेदन जमा करने, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र और नवीनीकरण करने, प्रैक्टिस क्षेत्र में बदलाव और वार्षिक रिटर्न जमा करने जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अपने डिजी लॉकर खाते से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने भारत और अन्य विकसित देशों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा परिवर्तन में ग्रीन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। श्री जोशी ने विकसित हरित हाइड्रोजन परिदृश्य का पता लगाने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंध को बढ़ावा देना है। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद आज भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम स्वदेश लौट आई। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। इन खेलों में कुमार नितेश ने स्वर्ण पदक, तुलसी मथी मुरुगेसन और सुहास यथिराज ने रजत पदक और मनीषा रामदास तथा नित्याश्री सिवन ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला युवा अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने देश के भविष्य निर्माण में युवा शक्ति की क्षमताओं का उपयोग करने का आह्वान किया। माई भारत प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने कहा कि ये युवाओं को कौशल और रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रकार की जानकारियां देता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बढ़ाने की घोषणा की है। आज एक प्रेस वार्ता में श्री गहलोत ने बताया कि इस कॉरिडोर के पहले लंबाई 22.91 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 23.73 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर आगे हरियाणा के कुंडली और नाथूपुर गांव तक भी जाएगा। राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बारिश आया नगर और 16.8 मिलीमीटर बारिश रिजर्व क्षेत्र में दर्ज की गई। सफदरजंग इलाके में भी 11.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव देखा गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति ने दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार दिए। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र, त्रिपुरा सरकार, एनएलएफटी और एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।